ओपन पोन का खेल मैंने 3 मर्दों के साथ पहले कार में फिर खुले जंगल में कैसे खेला। दोस्तों, कहानी के 7वें भाग में आपने पढ़ा कि कंपनी के मैनेजरों ने मिलकर मेरी पूरी रात जुदाई की। अब आगे, मेरा कामुक जिस्म अब जवाब दे चुका था। सुबह के 4:30 बज रहे थे। संदीप ने मेरे विरिये से भरे बदन पर चादर डाली, गोद में उठाकर अपने कमरे में ले गया। हम दोनों साथ नहाए तो जाहिर है दोनों नंगे ही थे। वह और मैं एक दूसरे की बाहों में सो गए। ऐसा लगा जैसे संदीप की बाहों में मिला सुकून मेरी सारी थकान को पी गया हो। जब आँख खुली तो संदीप और मैं नंगे एक ही बिस्तर पर लेटे थे। वह सो रहा था। यह पहली बार था जब मैं किसी मर्द की बाहों में नंगी थी, पर वासना से कोसों दूर मैं संदीप के प्रति केयर देख उससे लिपट गई, जिससे उसकी आँखें खुल गई। मुझे गले लगाए उसने पूछा, उस वीडियो का क्या करना है? वह वीडियो नहीं, इस दलदल से निकलने की एक चाबी है। अब देखते जाओ मैं इस दीपक को कैसे बर्बाद करती हूँ, मैंने जवाब दिया। मैं दीपक को ब्लैकमेल करने का मन बना ही चुकी थी। ये सब रोशनी के ज़रिए किया जा सकता था। रोशनी दफ्तर में नहीं है तो उस पर कोई शक भी नहीं करेगा। दीपक से पैसे और इज्जत से हमारा पीछा छोड़ने की डिमांड रखेंगे, नहीं तो वीडियो पोर्न हब पर और HR के पास देने की धमकी। संदीप ने हाँ में हाँ मिला दी। मेरा संदीप के प्रति आकर्षण अब बढ़ता जा रहा था। रोशनी और मैं साथ थी और कई बार लेस्बियन सेक्स कर चुकी थी। सच कहूँ तो संदीप के साथ उसकी और उसके बदन की याद नहीं आई। मैं संदीप के ऊपर आ गई। संदीप मेरे घुंघराले बालों से खेलने लगा। मेरे स्तन संदीप की छाती में दबे जा रहे थे। संदीप भी आगे बढ़कर मेरे होठों को चूमने लगा। हम दोनों एक दूसरे को चूमने चूसने लगे। उसके स्पर्श से लग रहा था कि वह भी मेरी तरफ आकर्षित है। संदीप का लिंग अब धीरे धीरे कड़क होने लगा था। मैं भी होठों से गुजर गालों और कानों को चूमने लगी। धीरे धीरे नीचे बढ़ते हुए मैं संदीप के सीने को चूम रही थी। मैंने हल्का सा उसके निप्पल पर दांत गड़ाकर काट लिया। संदीप ने मेरे बालों में घूमते उसके हाथों से कसकर मेरे बाल नोचे। मुझे पागलों की तरह गर्दन पर चूमने लगा और मेरे कूल्हों को दबाने लगा। मैं धीरे धीरे नीचे की ओर बढ़ती हुई उसकी नाभि तक पहुंच चुकी थी। अपनी जीभ से उसके जिस्म के हर हिस्से को चूमने और चाटने लगी। धीरे धीरे नीचे पहुंचकर मैंने संदीप की अंदरूनी जांघों को चूमना शुरू कर दिया। आ वीनस, मैंने भी उसका केला सा मोड़ा हुआ लंड अपने मुंह में ले ही लिया। संदीप जैसे 7वें आसमान पर था। आंखें बंद कर वो मेरे मुख चोदन का अनुभव कर रहा था। सही कह रहा था टॉम, तुम सच में काम की देवी हो। वो खुद को संभाल नहीं पा रहा था। उसने कहा, मैं झड़ जाऊंगा, रुक जाओ, मुझे तुम्हारी योनि को महसूस करना है और मेरी कांड। संदीप, हाँ, उसके लिए हम फिलीपींस चलेंगे। वहाँ तुम्हारी गांड और तुम्हारे बदन के हर हिस्से को मैं चोदूंगा। मैं भी मुस्कुराते हुए टांगे चौड़ी कर संदीप के लंड पर बैठ गई। उसका लोड़ा बाकियों से अलग था, खास जगह जाकर टकराता था। मुझे समय से पहले चरम सुख प्रदान हो जाता था। मेरी गांड पकड़कर मुझे आगे पीछे और ऊपर नीचे होने में संदीप भी पूरा साथ दे रहा था। संदीप और मैं दोनों इस जिस्मानी सुख से रूबरू होते हुए एक ही लय में एक दूसरे में समाये हुए थे। हम दोनों की आहों से कमरा गूंज रहा था। जब संदीप स्खलन की ओर था तो उसने मुझे कसकर बाहों में जकड़ लिया। मैं तब भी अपनी गांड मटकाते हुए संदीप से चुपती रही। हम थोड़ी ही देर में चरम सुख पर थे। हम दोनों ने एक दूसरे को बाहों में भरकर एक दूसरे के लबों से लब लगा दिए। हम दोनों ने एक दूसरे को कसकर पकड़ लिया। काफ़ी देर तक संदीप ने मुझे अपनी बाहों में जकड़े रखा। हमारी आँख खुली। जब नींद खुली तो संदीप के कमरे का किसी ने दरवाज़ा खटखटाया था। अरे संदीप, हो गया? जाना नहीं है क्या? नाश्ता तो कर ले, बाहर से मोहित की आवाज़ आई। रात भर जगने के कारण नींद भरी आँखें मलते हुए संदीप जागा। अरे हाँ भाई, सुन लिया, आ रहा हूँ। संदीप और मैं अलग हुए। वह कपड़े पहनने लगा। मेरे कपड़े तो दीपक के कमरे में थे ही, मैंने चादर ओढ़ ली। संदीप ने मुझसे कहा, तुम यहीं रुको, मैं नाश्ता लेकर आता हूँ, नहा धो लो तब तक। संदीप ने मेरे होंठ चूम कर मुझसे विदा ली। मोहित ने दरवाजे से झांक कर मेरी ओर देखा और शरारती मुस्कान के साथ अंदर आ गया। अंदर आकर बैठ गया, मेरी नंगी जांघों पर हाथ फेर कर बोला, कैसे रही रात? आग कुछ ठंडी हुई तेरी या भी बाकी है? ये कहते हुए चादर के अंदर हाथ डालकर मेरे चूचों को मसलने लगा। दीपक ने बताया नहीं या रात तुमने देखी नहीं, मैं ठंडी नहीं होती। ये कहकर मोहित के मचलते हाथों पर हाथ रखकर उसके हाथ अपनी चूत पर बढ़ा दिए। मैंने इशारा पाकर मोहित भी मुझे उंगली करने लगा और मैं फिर से गीली होने लगी। मोहित ने तुरंत अपना लंड निकाला, बिस्तर पर लिटाकर मुझ पर चढ़ बैठा, अपना लोड़ा मेरी चूत पर टिकाए एक जोर के धक्के के साथ अंदर पेल दिया। अब मैं मोहित के नीचे लेटी उससे चुदने लगी। संदीप को आने में कम से कम 20 मिनट तो लगेंगे ही, ये सोचकर मैंने मोहित को ललचारा। क्या हुआ, रात मेरे मुंह में झड़कर फुस हो गए आप? ये सुनकर मोहित ने मुझे पलटा और कुतिया बनाकर दूर जोर से निर्मम तरीके से मुझे चोदने लगा। चुप कर साली रंडी, ये कहकर मोहित ने मेरे बाल पकड़े और अपनी ओर खींचने लगा। कुतिया, तेरी चूत नहीं जन्नत है, जितना चोदो उतना कम है, हर चुदाई के साथ और कस जाती है। आह मेरी रंडी, मेरी वीनस, कहते हुए मोहित मेरी चूत में झड़ गया। पैंट पहनी और बाहर चला गया। थोड़ी देर में संदीप भी आ गया, वो नाश्ते के साथ मेरे कपड़े भी ले आया। हम दोनों ने साथ में नाश्ता किया। मैं वापस निकलने के लिए तैयार हो गई। इस बार धीरज, कार्तिक और दीपक मेरे साथ गाड़ी में बैठ गए। हम सभी वहाँ से दोपहर 1 बजे के करीब निकले। धीरज ने कार्तिक से कहा, गाड़ी हाईवे पर आने दे, मज़े करेंगे। दीपक मेरे साथ पीछे बैठा था और धीरज आगे, कार्तिक चला रहा था। धूप के बहाने से गाड़ी की खिड़की पर टॉवल लगा दिया और देखते ही देखते गाड़ी फिर से उनकी वासनाओं का अड्डा बन गई। हाईवे पर आते ही दीपक ने मुझे नंगी करते हुए कहा, वीनस, तेरे इस भरे हुए जिस्म पर कपड़े अच्छे नहीं लगते, आ तेरे बदन को बेपर्दा कर दूं। धीरज मुड़ मुड़ के देख रहा था। दीपक ने मुझे सीट के बीचों बीच बैठने को कहा और टांगे जितनी खोल सकती है खोल ले बोल दिया। मैंने उसके कहे अनुसार वैसा ही किया। अब दीपक बगल में बैठे मेरी चूत सहलाते हुए मेरे उरोज पीने लगे, बीच बीच भी अपनी भीगी गीली उंगलियां मेरे मुंह में डालकर चुसवाते, जो मेरे ही रस से भीगी हुई थी। सबके लोड़े रात पर मुझे चोद चोद कर खड़े नहीं हो रहे थे, पर सबने मुझे नंगी कर मसलने की लालसा अब भी थी। अरे धीरज, तुम भी मज़े लेने हैं तो पीछे आ जा, चुदाई के लिए तैयार है ये। अरे सर, पहले आप ठोक लो फिर मैं करूँगा। मैं भी गर्म हो चुकी थी। मैंने दोनों को आमंत्रण देते हुए कहा, सर आप दोनों एक साथ ही क्यों नहीं आ जाते, कहीं गाड़ी रुकवा ले, मैं तो तीनों एक साथ लेना चाहती हूँ, तीनों छेदों में। ये कहते हुए मैंने आगे बढ़कर दीपक का हाथ अपनी चूत पर दबाते हुए उसके होठों पर होठ रख दिए। अब दीपक के शिथिल पड़े लंड में कसाव आने लगा था और मेरा खुला निमंत्रण पाकर कार्तिक और धीरज दोनों ही मेरी जवानी को फिर से भोगने को मचलने लगे। ये सुनसान जगह आते देख कार्तिक ने गाड़ी किनारे लगा दी। मैंने भी आधे अधूरे कपड़े पहन लिए। हम चारों गाड़ी से बाहर निकले और जंगल में चले गए। 15 मिनट तक सीधे चलकर जब हाईवे पर चलती गाड़ियों की आवाज़ कम आने लगी, तब दीपक ने मुझे पेड़ से टिकाकर तीनों छेद भरने हैं कहा, आज खुले आसमान के नीचे तेरी फाड़ के रख देंगे। धीरज और कार्तिक भी नंगे होने लगे। अब तीनों अपने लंड को सहलाते हुए मुझे घेर कर खड़े हो चुके थे। दीपक मेरे ठीक सामने था। उसने मेरी गर्दन घोटने की क्रिया की तरह पकड़ी और मेरी चूत पर अपने आधे अकड़े लंड का टोपा रगड़ने लगा। धीरज ने मेरा दाहिना स्तन दबोचा और चूसने लगा और मेरे हाथ में अपना लंड पकड़ा दिया। धीरज और कार्तिक मेरे स्तनों पर तमाचे मार मार कर उन्हें लाल कर ही चुके थे। तब दीपक ने भी मेरे चेहरे पर तमाचे चढ़ दिए। दोस्तों, आप लोग लग रहा होगा कि कितनी क्रूरता है, लेकिन इसमें एक नया अनुभव है, बहुत मज़ा आता है। मेरे दोनों चूचक बेदर्दी से मरोड़े जा रहे थे। मेरा बदन अकड़ने लगा। दीपक जान गए कि मैं स्खलन की ओर हूँ। उसने तुरंत लोड़ा हटाते हुए कहा, बहन की लोड़ी झड़ने नहीं देंगे आज तुझे। जब दीपक नीचे अपनी कमीज़ बिछा कर लेट गया और मुझे अपने लंड पर बैठने को कहा, मैं लंड अपनी चूत में सट कर झुक कर बैठ गई, गांड को पीछे की ओर उचका दिया। कार्तिक मेरी गांड मारना चाहता था, वो पीछे आ गया और दोनों ने मुझे सैंडविच बना दिया। धीरज साइड में मेरा मुंह पकड़े हुए था। जब दीपक और कार्तिक सेट हो गए तो मैंने धीरज के लिए अपना मुंह खोल दिया। ओपन पोन का खेल अब शुरू होने वाला था। तीनों के लंड आधे अधूरे खड़े थे। मैं नकली आह आह की आवाज़ें करती रही और जंगल के बीच इन तीन भूखे भेड़ियों से चुतती रही। मज़ा बिल्कुल नहीं आ रहा था। चूत और गांड में शिथिल लुल्लियाँ कहाँ मज़ा देती हैं। इस आधी अधूरी चुदाई का दौर तकरीबन एक घंटा चला। इसमें चौथे चौथे उन्होंने सिगरेट फूकते फूकते मेरी गांड और चूत फाड़ डाली। तीनों में से किसी का लंड ठीक से खड़ा नहीं हुआ और ना ही छोड़ा। आखिर तीनों ने हार मान ली। थक कर चूर हो गए तो पास ही मूतने लगे। मुझे भी सुसू लगी थी। मैं मूतने को उठी तो रोक ही ना पाई। खड़े खड़े मेरा मूत मेरी चूत से बह निकला। तीनों हंसने लगे। क्यों, आया ना तीनों छेदों में लेने का मज़ा। सर, आपने तो चोत चोत कर मेरी जान ही निकाल दी है। मेरी रानी, तू तो लंडों की मल्लिका है, सीईओ तक से चुदाई है। अब कौन है जो तेरी तरक्की में आगे आएगा? कार्तिक बोला, मैं गाड़ी से पानी ले आता हूँ, थोड़ी साफ़ सफाई करके फिर आगे का सफ़र करते हैं। कल का पूरा दिन और रात रंगीन करने के बाद आज मेरी हालत ख़राब हो गई थी। मैं कुछ दूर पत्थर पर जाकर बैठ गई। थोड़ी देर में पानी आ गया। मैंने अपने हाथ पांव धोए और कपड़े पहन लिए। दीपक को कमीज ख़राब हो गई थी तो कार्तिक डिक्की से दूसरी कमीज ले आया। हम सब ने कपड़े ठीक किए और गाड़ी की ओर बढ़ चले। सफ़र फिर शुरू हुआ। तीनों रात को हुई मेरी रगड़ाई और चुदाई की बातें करने लगे। थकावट के कारण न जाने कब मेरी आँख लग गई। आँख खुली तो धीरज और कार्तिक दोनों उतर चुके थे। गाड़ी में सिर्फ मैं और दीपक थे। मुझे जगती देख दीपक ने मुझे आगे आकर बैठने को कहा। मैं आगे चली गई, मेरी जांघों को भीजते हुए बोला, अच्छा लगा ये ट्रिप। तेरी गर्मी के आगे दफ्तर की सारी लड़कियां फेल हो गई। तुझे चोद के जो सुकून मिलता है ऐसा कभी रोशनी से भी नहीं मिला। पर रोशनी से पहले जो प्रिया थी वो तेरी तरह कमाल की माल थी। सुबह जल्दी आकर मेरे कमरे में नंगी हो जाती थी। उसके भी बहुत मज़े लिए। मैं अगले महीने सिंगापुर जा रहा हूँ, चलोगे ना मेरे साथ? मैंने कहा, आपको सोच के बताऊंगी, अभी मुझे घर जाना है, घर वाले रिश्ता देख रहे हैं। मैंने टालने को कहा, चलो ठीक है बता देना। थोड़ी देर में घर आ गया। दीपक ने मुझे उतार दिया, मैं घर लौट आई। घर लौटते ही मैंने सबसे पहले रोशनी को फ़ोन लगाकर पूरी बात बताई और उसे वीडियो भी भेजी जिसमें उसका एक बालिया बयान था, दीपक वाली। दूसरी ओर मैंने संदीप को नौकरी तुरंत बदलने का सुझाव दिया। संदीप का रिश्ता मैं कायम रखना चाहती थी पर समझ नहीं आ रहा था कि रोशनी को कैसे बताऊं। उधर टॉम भी मुझे अमेरिका ले जाना चाहता था। कुछ दिन बाद रोशनी ने किसी और के दस्तावेजों से नया सिम और फ़ोन लिया और तब उसने दीपक को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। शुरू में दीपक ने रोशनी की बात को गंभीरता से नहीं लिया पर जब दीपक की रिकॉर्डिंग की झलक रोशनी ने भेजी तो उसके हाथ पांव फूल गए। वो पता करने लगा कि नंबर किसका है। कई बार मेरा पर्स और फ़ोन चेक किया, यहाँ तक कि उसके शक के घेरे में सभी मैनेजर आ चुके थे। अपनी करतूतों के कारण पुलिस के पास जा नहीं सकता था। यदि भांडा फूट जाता तो सीईओ तक आ जा सकती थी, कंपनी का नाम खराब हो सकता था। दीपक की नौकरी जाती तो उसे आगे कहीं काम नहीं मिलता। कुछ ढूंढ ना पाने के कारण दीपक सतर्क हो गया और कारनामों पर काबू किया। शादी के बहाने एक माह बाद मैंने इस्तीफा दिया तो दीपक को राहत की सांस आई। उधर रोशनी ने दीपक से 5 करोड़ की डिमांड रखी और उन पैसों को गुड़गांव के एक बनती बिल्डिंग के 9वें माले पर रखने को कहा। दीपक पैसे वहां रखने गया। बहुत देर तक इंतजार करता रहा, छुप कर कि शायद कोई आए और उसे दबोच ले। तकरीबन 12 घंटे वहाँ रहा, कोई नहीं आया क्योंकि रोशनी पास वाली बिल्डिंग से नज़र रखे थी। दीपक को मैसेज करके उसने कहा, अपने आप को बहुत होशियार समझते हो, अगर पैसा छोड़कर गए नहीं तो 15 मिनट में ये वीडियो तुम्हारी बीवी समेत सबके पास चली जाएगी। मैसेज पढ़ने के बाद दीपक को समझ आ गया कि जब तक वह जाएगा नहीं ब्लैकमेलर नहीं आने वाला। बहुत देखा कहीं कोई CCTV तो नहीं, फिर चला गया। रोशनी भी उसी वक्त वहाँ नहीं गई। सुबह 3 बजे बैग उठा लाई, फ़ोन करके बताया कि पैसे मिल गए हैं। 4 बजे फ़ोन को सिम के साथ दूर जाकर नाले में फेंक दिया। कुछ महीने बाद हमने पैसों के 3 हिस्से किए। मैंने रोशनी को बता दिया कि किस तरह मैं किसी और के प्यार में पड़ चुकी हूँ। रोशनी का दिल टूट गया। संदीप ने 3 महीने में दूसरी नौकरी ढूँढ ली, और हम साथ रहने लगे। हमने शहर बदल लिया और पैसे बैंक के 4 अलग अलग लॉकरों में रख दिए। अब मेरे नाम पर गुड़गांव में एक फ्लैट है और संदीप के साथ मैं खुश हूँ। संदीप और मैं एक ओपन शादी में, हम दोनों ही सेक्स के हर पहलू का अनुभव करना चाहते हैं। उसके प्यार ने मेरे सारे घाव भर दिए। हम दोनों अपनी अपनी ज़िंदगी में बिजी रहते हैं और प्यार जताने का कोई मौका नहीं बताते। संदीप जानता है कि मैं बाइसेक्सुअल हूँ। मैं उसे और रोशनी के हम बिस्तर होने से कोई दिक्कत नहीं है। रोशनी और मेरी कहानियाँ फिर कभी। दोस्तों, कैसी लगी मेरी ये कहानी ज़रूर बताइएगा। आपके मेलों कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद।